ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम लोग जो हैं छठे स्कंद के 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 54 से लेकर 61 तक पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बीच में प्रपट नहीं है और बोर्ड पर जो है श्लोक लिखा है 61। तो हम लोग इसको हमारे पीछे धरने का प्रयास कीजिए। लब्धवा ततंतरम शक्रः निद्रा अपहृत चेतसा दिते प्रविष्ट उदरम योग ईश योग मायया। लब्धवा तद अंतरम शक्रो निद्रा प्रहत चेतसा दिते प्रविष्टा उदरम योगे एशो योग मायया। लब्धवा तदंतरम शक्रो निद्रा प्रहत चेतसा दिते प्रविष्टा उदरम योगेशो योग मायया। लब्धवा तदंतरम शक्रो निद्रा बृहत चेतसा दिते प्रविष्टा उदरम योगेशो योग मायया। लब्धवा पाकर तदंतरम तत्पश्चात शक्र इंद्र निद्रा नींद से अप्रहत चेतसा अचेत दिते दिति के प्रविष्ट घुस गया उदरम गर्भ में योग ईशः योग के स्वामी योगेश्वर योग योग सिद्धियों की मायया शक्ति से। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की बोलिए। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियों योग सिद्धियां यथा अणिमा लघिमा के स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। तात्पर्य परम सफल योगी को 8 सिद्धियां प्राप्त रहती हैं। इनमें से एक के द्वारा जिसे अणिमा सिद्धि कहते हैं वह परमाणु से भी लघु बन सकता है। उस अवस्था में वह कहीं भी प्रविष्ट हो सकता है। इंद्र इसी शक्ति में गर्भिणी दिति के भीतर प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग है श्रीमद्भागवतम में कश्यप और दिति के मध्य, दिति जो कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जिसकी दो संतानें थी, जिनको कि जब हम लोग भागवतम में ही पहले स्कंद में है जैसे बताते हैं, जहां पर कहा गया है परमेश्वर कृष्ण है, उस श्लोक में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वहां बताया गया मृगराणी युगे युगे अर्थात इंद्राणी, इंद्र जो है उसके जो शत्रुओं का समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं बार बार अवतार लेते हैं। तो उसी प्रकार जब जब इस पृथ्वी पर असुरों का बोलबाला होता है और जब इंद्र के हाथ में कुछ नहीं रहता तो इंद्र जो है भगवान की शरण में जाते हैं। इस पूरे प्रसंग में इवन भागवत हम पूरी जगह देखें तो हर जगह इंद्र की बात कहीं ना कहीं आती है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते हुए, माफिया मांगते हुए। और ये किरदार ऐसा किरदार है इस पूरे भागवतम में जहां पर हम देखते हैं कि इंद्र जो है कई जगहों पर गलतियां करते हैं, कई जगहों पर असुरों के साथ युद्ध करते नजर आएंगे, कई जगहों पर माफिया मांगते हुए भगवान को पुकारते नजर आएंगे। पूरे भागवतम में इंद्र एक ऐसे किरदार हैं जिनको ऐसा टास्क मिला है, ऐसा किरदार मिला है जहां पर इनको हर जगह करना पड़ता है। इवन बताया जाता है, देखते हैं हम लोग कि भागवतम में ही दो प्रसंगों में, दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण से भी बैर किया इन्होंने। एक बार तो जब इंद्र ने जो है गलती की थी, क्या किया था, समंतक बादलों के द्वारा पूरे वृंदावन में बरसात करवाई थी, और एक छोटा सा बालक जो कि लगभग 7 साल के ही थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए और इंद्र को मजा चखाने के लिए गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर लगभग 7 दिन उठाए रखा। इतना बड़ा अम्ब्रेला पूरे वृंदावनवासियों के लिए, जिसमें कि पूरा ब्रज समा गया। और जब इंद्र को तब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का पता चला और माफी मांगने आए, माफी भी मांगे। यही इंद्र जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की एक रानी, क्या नाम था उनका, सत्यभामा, ने इच्छा करी परिजात वृक्ष की, जो कि स्वर्ग में उगाए जाते थे, जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती थी, तो भगवान कृष्ण ने जाते हुए एक पेड़ उखाड़ लिया और कहा कि हमें हम द्वारका में लगाएंगे। अब इसी बात के लिए इंद्र, देखिए जो मान जानता है भगवान कौन है, जिनसे एक बार माफी मांग चुके हैं, उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और फिर सामना करना पड़ा भगवान का। तो इंद्र जो है समय समय पर इस प्रकार की गलतियां करते हैं, इस प्रकार की जो है उनसे गलतियां होती हैं और उसके बाद माफी मांगते दिखते हैं पूरे प्रसंग में। तो ये एक ऐसा किरदार है इंद्र जी का। वास्तव में यह भी बताया जाता है कि जब इंद्र जैसी पोस्ट हर किसी आसान व्यक्ति को भी नहीं प्राप्त होती, और जब कभी कोई नहीं मिलता योग्य व्यक्ति, तो भगवान कृष्ण को ही जिस प्रकार ब्रह्मा या शिव बनना पड़ता है, उसी प्रकार इंद्र का भी रूप लेना पड़ता है कई कई को। तो इंद्र कोई साधारण पोस्ट नहीं है, इस पोस्ट में काफी जो है कह सकते हैं गालियां भी पड़ती हैं, है ना, देवताओं का हमेशा सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के अपराधों की जो है हमेशा संकट बना रहता है। अब इस प्रसंग में भी जब हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे लोगों ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाया हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उनकी ड्यूटी है कि इस सबको बचाने के लिए मुझे भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करी, और भगवान आए भी, और भगवान ने हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का वध भी किया। लेकिन जो देती है, जो कि हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु की माता है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। बच्चा चाहे कैसा भी हो, माता को प्रिय होता है। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे असुर, जिन्होंने कि पूरे विश्व को सर पर उठा रखा था, तो वो थे दिति के ही पुत्र, उनका वध भी हुआ, तो इसका ब्लेम उन्होंने किसको दिया, इंद्र को। और इंद्र के खिलाफ, इंद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने पति से गुहार भी लगाई, और उसको करने से पहले उन्होंने अपने पति की, कश्यप मुनि की, खूब सेवा करी, और उसके बाद कहा कि मुझे जो है अपने गर्भ में एक ऐसा शिशु चाहिए जो इंद्र का वध करे। अब इस प्रकार का वर देने से पहले कश्यप मुनि को भी लगा, अगर मैं ऐसा संतान उत्पन्न करता हूं तो अपराध तो मुझे भी लगेगा, भैया इंद्र तो वैष्णव है, अब उसको मरवाने के लिए, क्योंकि तो उन्होंने क्या किया, 1 साल का समय मांगा और कहा कि तुम्हें एक क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, इसके द्वारा तपस्या करनी पड़ेगी, तो जाके आपकी ये मनोच्छा पूरी होगी और भगवान विष्णु के तहत ही करना पड़ेगा। कहते ठीक है। तो 1 साल तक, और इधर क्योंकि इंद्र को भी अपनी मृत्यु का डर था, उन्हें पता था कि मेरे को मारने के लिए एक संतान की इच्छा की जा रही है, तो इंद्र जो है दिति के ही घर पर सेवक बनकर आ गए, और ये लगभग 1 साल तक चलता रहा। इंद्र जो है समय ढूंढता रहा कि क्या मैं ऐसा कुछ करूं, कहीं कुछ गलती हो, कहीं कोई गलती नहीं होती, आज के श्लोक में गलती हो रही है जो इतने दिन से जो प्रसंग चल रहा है, क्या गलती हुई, गलती थी, जब हम लोग 54 श्लोक से थोड़ा लगातार पढ़ेंगे तो हमें इस पर गलती पता चलेगी। और आज जो उन्होंने वो किया जो गलती होने के बाद, तो उसमें इन श्लोकों को हम लोग इसका केवल अनुवाद पढ़ेंगे। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धापूर्वक कम से कम एक वर्ष तक इस व्रत में लगी रहकर इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगी तो तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का वध करेगा, किंतु यदि इस व्रत को करने में कुछ भी त्रुटि रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। कंडीशन भी दे दी कि अगर तो तुमने ठीक प्रकार से इस अनुष्ठान को किया तब तो तुम्हारा जो मन में जो इच्छा है वो पूरी होगी कि भाई तुम इंद्र के शत्रु को पैदा करोगे। लेकिन अगर इस अनुष्ठान को करते हुए कहीं भी त्रुटि रह गई तो जो पुत्र तुम सोच रही हो उसका शत्रु हो वो क्या बन जाएगा, इंद्र का मित्र बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद शुकदेव को समझ आके बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, कश्यप की पत्नी दिति ने पुंसवन नामक शुद्धिकर्तृन विधि को करना अंगीकार कर लिया। उसने कहा, हां मैं आपके उपदेशानुसार सब कुछ करूंगी। वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कश्यप का वीर धारण कर गर्भवती हुई और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करती रही। अगर कभी किसी व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो उसके लिए वो कहां तक जा सकता है, कितनी तपस्या कर सकता है, वो यहां दिख सकता है। दिति को उस अनुष्ठान को करने के लिए इतना आसान नहीं था वो अनुष्ठान, लेकिन फिर भी क्योंकि इंद्र को मारना था, लक्ष्य क्लियर था कि इंद्र को मारवाना है, तो इसलिए एक साल का अनुष्ठान भी पूरा कर लिया। और कहा कि देखिए गड़बड़ थोड़ी सी भी कहीं होगी पूरे साल में तो वो जिसको तुम संतान को उत्पन्न करना चाहती हो क्या बन जाएगा, इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो इतनी बड़ी मतलब अगर छोटी सी गलती होने पर भी ये हो जाएगा तो देखिए उसके बावजूद भी द्वितीय ने एक्सेप्ट किया और कहा कि हां मैं एक्सेप्ट करती हूं। तो ये है, एक्सेप्टेंस तो है लेकिन किस बेस पर है, ईर्ष्या द्वेष के बेस पर। सबों का सम्मान करने वाले हैं राजा, इंद्र ने दिति का मंतव्य जान लिया अतः वह अपना स्वार्थ साधने की युक्ति सोचने लगा। इस तर्क का अनुसरण करते हुए कि आत्मरक्षा प्रकृति का श्रेष्ठ नियम है, उसने दिति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा इंद्र ने। अतः वह आश्रम वासिनी अपनी मौसी दिति की ही सेवा करने लगा। यहां पर आत्मरक्षा प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ नियम है, इंद्र ने विचार किया। जैसे हमने एक बार पहले बताया था कि हर व्यक्ति सबसे पहले अपने को ही बचाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। जब हम लोग एयर से भी ट्रेवल करते हैं तो सामने उनके पास जो नोट्स होते हैं उसमें लिखते हैं कि अगर आपके साथ बच्चा है और किसी समय कोई दिक्कत हो जाए, मास्क वगैरह पहनना, तो ऐसा नहीं कि पहले बच्चे को बचाओ या बच्चे को पहनाओ, नहीं, पहले आप अपने को पहनाओ फिर बच्चे को पहनाओ, पता चले बच्चे को पहनाते आप लड़क गए और बच्चा भी गया, है ना। तो कहते पहले आत्मरक्षा, पहले अपनी करो उसके बाद सीखो। तो ये प्रकृति का नियम है। एक बहुत बड़े ट्यूब के अंदर पानी के एक बंदर और बंदरिया के बच्चे को रखा, पानी जो है उसके अंदर धीरे धीरे भरने लगा ये देखने के लिए कौन किसको बचाता है। तो धीरे धीरे जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ा तो बंदरिया ने अपने बच्चे को उठा लिया, पानी का लेवल और बढ़ा तो कंधे पर रख लिया, और लेवल बढ़ा तो सर पर रख लिया, और लेवल बढ़ा कब तक, कहां तक कि बंदरिया के नाक से ऊपर पानी उठने लगा। तो बंदरिया ने क्या किया, उस बच्चे को लिया, उसको अपने पैरों के नीचे रखा और उसके ऊपर खड़ी हो गई। आत्मरक्षा, पहले मैं तो बच लूं, है ना। तो इससे पता चलता है कि प्रकृति का यह नियम है कि सबसे पहले हम अपनी रक्षा करें उसके बाद हम दूसरे की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि पहले हम लोगों को जन्म सार्थक करने का प्रयास करना है, अर्थात पहले खुद आत्म साक्षात करने का प्रयास करना है, विधि विधानों का नियमों का पालन करने का प्रयास करना है और साथ ही साथ उसके बाद प्रचार करना शुरू करना है। तो इंद्र भी जो है अब अपने को बचाने के लिए अपनी मौसी अर्थात दिति के घर पहुंच गए और उनकी सेवा करने लगे। क्या सेवा करते थे, देखिए इंद्र प्रतिदिन जंगल से फूल फल कंद तथा यज्ञ के लिए समिधा लाकर अपनी मौसी की सेवा करने लगे। वह उचित समय पर कुश पत्तियां कलियां मिट्टी तथा जल भी ले आता था। हर चीज समय पर कर रहे थे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर छद्मवेश धारण करता है, उसी प्रकार से इंद्र हृदय से दिति के पुत्रों का शत्रु किंतु बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिति की सेवा करने लगा। इंद्र का मंतव्य दिति के व्रत के अनुष्ठान में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना चाहता था, किंतु साथ ही वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान सके, इसलिए वह अत्यंत सतर्कता से के साथ उसकी सेवा करता था। देखिए यहां पर अपने को बचाने के लिए इंद्र ने मदद करना शुरू कर दी। हर चीज बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं, उनके साथ सारी चीजें सही समय पर लाकर दे रहे हैं। और अब कह रहे हैं, हे विश्वेश्वर, जब इंद्र को कोई त्रुटि ना मिली तो उसने सोचा अब मेरा कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार वह गहरी चिंता में डूब गया। अब कोई गलती नहीं ढूंढ पा रहा है उतने समय से। फिर बता रहे हैं इसके बाद, एकदा सातु संध्या मुत्तिष्ठा वक्त कर्षिता आस्पृष्ट विष्टवार्य धोतदिंग्रे सुष्वाप विधि मोहिता। कठोरता से व्रत का पालन करते रहने से अत्यंत क्षीण एवं अशक्त हो जाने से दुर्भाग्यवश द्विति ने भोजन के पश्चात मुंह हाथ तथा पांव धोने में लापरवाही बरती और संध्या ही सो गई। शाम के समय सो गई। कब? एक तो कब, जब क्षीण हो चुका था पूरा शरीर दुर्बलता के कारण, थक गई थी काफी, और फिर संध्या के समय भोजन करने के पश्चात ना हाथ धोया ना मुंह धोया ना पैर धोए और संध्या के समय ही सो गई। तो ये गलती है, संध्या के समय सोना है वर्जित है। और उसके बाद भी बिना खाए पिए शुद्धता का ध्यान रखे बगैर सोना, ये भी एक बहुत बड़ी त्रुटि है। आज के श्लोक में बता रहे हैं, इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियों योग सिद्धियां यथा अणिमा लघिमा के स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत द्विति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इतने समय से वो मौका ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे कोई गलती ढूंढूं। अचानक आज उनको गलती मिली। और क्या गलती थी? कि उन्होंने बिना खाने के बाद मुंह हाथ नहीं धोया, पैर नहीं धोए और संध्या समय ही सो गई। तो ऐसे समय पर अपनी योगिक शक्तियों का फायदा उठाते हुए इंद्र ने क्या किया, अपने को सूक्ष्म बना लिया, एटम्स कहते हैं, एटम से भी छोटा बना लिया। ऐसी सिद्धियां जो ये योगिक सिद्धियां हैं, जो योगी जन पर्वतों पर बैठकर खूब ध्यान लगाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, इन आठ विधियों का पालन करते हुए जो है वो इन योगिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये योगिक शक्तियां जो है इसके अंदर जो बताई जा रही है, अघिमा लघिमा अणिमा, इस प्रकार की जो आठ सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के द्वारा योगी जो है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सकता है, एक अलग से प्लेनेट क्रिएट कर सकता है, अपने शरीर को बड़े से बड़ा कर सकता है, भारी से भारी कर सकता है, छोटे से छोटा कर सकता है, अदृश्य हो सकता है। इस प्रकार की सिद्धियां जो है प्राप्त की जा सकती है। तो मौका पाकर इंद्र ने क्या किया, एकदम अपने को सूक्ष्म बना लिया और द्विति के गर्भ में प्रवेश कर लिया। तो आगे की कथा में जो है बताया जाएगा कि किस प्रकार अंदर जाने के बाद इंद्र ने उस बच्चे को जो माता के गर्भ में था द्विति के, उसको सात भागों से काट डाला मारने के लिए। जब सात बार काटा तो क्या देखते हैं कि वो सातों जो जगह से काटा उसको, सात टुकड़े किए, उस सातों के सातों शिशु बन गए, उनके अंदर प्राण थे, वो रोने लगे, डरने लगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक बच्चे को लिया, उसको भी सात जगह से काटा, फिर दूसरे को लिया, उसको भी सात जगह से काटा। इस प्रकार कितने टुकड़े कर डाले, 49 टाइम, और वो सारे के सारे बच्चों के अंदर प्राण आ गए और वो जीवित हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी आगे बताते परीक्षित महाराज को, क्योंकि माता के गर्भ में किसी को काटने से मृत्यु हो जाएगी ना, तो वो बता रहे हैं आगे कि जिस प्रकार द्रोणा द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने एक तीर छोड़ा था ब्रह्मास्त्र किसे मारने के लिए, परीक्षित तुम्हें मारने के लिए, और तुम्हें मारने के लिए जब वो तीर अंदर गया था उसी समय भगवान ने क्या किया, गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा करी और तुम्हें नया शरीर दिया। उसी प्रकार यहां पर भी इंद्र ने उस बच्चे को 49 भागों में काट डाला, लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि द्विती जो है भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी, उनकी पूजा कर रही थी। बताते कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया या थोड़ी सी भी सेवा कर ली, उस व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। यहां तो लगभग 1 साल तक द्विती ने भगवान की सेवा करी और उसनी कठोर तपस्या करी बिना किसी डेविएशन के। उसका फल क्या हुआ कि जब इंद्र ने माता के गर्भ में जाकर उसको काटा भी तो सबके अंदर प्राण आ गए, और जब वो बच्चे चिल्लाए कि हमें मार क्यों रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं नहीं मारूंगा, कहते हम तो तुम्हारे मित्र हैं, ठीक है तुम मेरे मित्र बन जाओ। इंद्र ने बोला मैं तुम्हारा मित्र हूं, ठीक है, वो सब उसके दोस्त बन गए। और आने वाले समय पता चलेगा कि किस प्रकार माता के गर्भ से जब शिशु बाहर आए तो सब मित्र थे, और फिर उन्होंने पूछा इंद्र से कि भाई ये सब क्या हुआ और कैसे, सच सच बताओ, तो इंद्र ने सच सच बता दी। तो माता खुश थी भाई एक की जगह 49 बन गए, और 49 के 49 मारुत जो है जो मित्र बन गए, ठीक है नो प्रॉब्लम। कारण भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, विष्णु की भक्ति करने से धीरे धीरे व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। किसी के अंदर भी कितना ही ईर्ष्या द्वेष क्यों ना हो, ये भगवान के नामों में भगवान की भक्ति में ये गुण है कि वो उस व्यक्ति को शुद्ध करेगी ही करेगी। जैसे ध्रुव महाराज अपने पितामह से भी ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए 5 साल की उम्र में इतनी दृढ़ता के साथ जंगल में चले गए, नाराज जी के समझाने के बाद कि बेटा मत जाओ, तुम तो भी 5 वर्ष के हो, थोड़े बड़े हो जाओ तो करना, अभी तो पढ़ने के दिन है, 18 के बाद फुल टाइम होना, नो प्रॉब्लम। वो कहते नहीं मेरे काम की कोई बात है तो बताओ, मैं तो जा रहा हूं भक्ति करने के लिए। उसकी दृढ़ता को देखकर एक बार नाराज जी को भी लगा कमाल हो गया, क्षत्रियों का जो खून होता है ना कमाल का, एक बार कुछ दिमाग में आ जाए तो ठान लेते और करते हैं पूरा। उनकी दृढ़ता को देखकर नाराज जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, और फिर क्योंकि मटेरियल डिजायर थी, अपने पितामह से भी ऊंचा पद चाहिए था, उस इच्छा के साथ उन्होंने नाराज जी के कहने पर उस तपस्या को करा, जिसमें 4 महीने के बाद ही सांस लेना बंद कर दिया। एक बार सांस लेते थे और उसके बाद तो जब एक बार ली तो उसके बाद दोबारा छोड़ी नहीं सांस को, और क्योंकि एक बार जब अंदर ले ली तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आता हवा खत्म, सब लोग जो है खांसने गिरने लगे। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ठीक है मैं अभी उनको दर्शन देने वाला हूं, तुम चिंता मत करो। तो जो समय हमारे लिए 6 महीने है, ऊपर के लिए तो कुछ क्षण थे, लेकिन फिर भी जैसे ही हवा को रोक लिया तो भगवान सामने आए, भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव को, माथे पे शंख रखा, ध्रुव ने भगवान को भगवान की स्तुति करी और प्रार्थना करी, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जो हूं वो देना चाहता हूं जो तुमने मांगा था। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मूर्ख था, मैंने जो है हीरे की जगह कांच के टुकड़ों को मांग लिया, मैं क्या मांग सकता था, आपके साथ रहना चाहता हूं भगवान। कहते नहीं, अब तो क्या होगा, तुमने क्योंकि इच्छा रखी थी उस इच्छा को मैं देखिए, भगवान की भक्ति से शुद्ध हो गए ध्रुव और उनकी इच्छा बदल गई। देने के बावजूद भी जब भगवान अदृश्य हुए तो जब ध्रुव महाराज वापस जा रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते अपने को कोसते जा रहे थे, मैंने क्या कर लिया, मैं ऐसी फेवरेबल कंडीशन में जब मैंने भक्ति करी, अपनी तपस्या से अपने त्याग से भगवान को प्रसन्न करकर अपने सामने खड़ा कर डाला, और मन के अंदर मेरा गंदे मन के अंदर क्या डिजायर थी कि पितामह से भी ऊंचा पद चाहिए, इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पद चाहिए, बस इसलिए मैंने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपने को बहुत गंदा किया। ये उस व्यक्ति को तब पता चलता है जब व्यक्ति इस प्रकार अपने मन से भक्ति कर या अपने इच्छाओं के अधीन होकर भक्ति कर उन इच्छाओं को पूरा करवा लेता है जो उसकी जरूरतें हैं या जो उसकी इच्छाएं हैं। और उसके बाद क्योंकि भगवान उस व्यक्ति को दे देते हैं, ठीक है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा धन इत्यादि चाहिए ले लो, लेकिन मेरा प्रेम नहीं मिल पाएगा, समय लगेगा, कुछ और युग या कुछ और जन्म लेने पड़ेंगे, वही समय वही योग्यता का वो इस्तेमाल कर सकते थे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति लेने के लिए। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती तीव्र न भक्ति होना, कहते हैं कि तीव्र भक्ति करते रहिए, अगर काम है इच्छाएं जो भी है लेकिन भगवान की भक्ति कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान धीरे धीरे भक्त को शुद्ध कर देते हैं। तो ध्रुव महाराज को भी शुद्ध कर दिया, लेकिन ध्रुव महाराज 36,000 सालों तक राजा तो बन गए लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उनको कभी भूले नहीं। जब व्यक्ति भगवान के नामों का जप करते हुए सेवा करते हुए अपने मन में इच्छाएं रखता है विविध प्रकार की, क्योंकि देहात्म बुद्धि है, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, प्रयास कर रहे हैं, इच्छाएं हैं मन में, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग भगवान से याचना करते हैं जप करते समय सेवा करते समय, पहचान चाहिए इस प्रकार की इच्छाओं के साथ जब करते हैं तो भगवान वो सब दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसका तिरस्कार करता है, मुझे नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है, इसी अध्याय में बताया जाएगा, भगवान उसकी सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जब बच्चा नाबालिग अर्थात भक्ति में न्यूफाइट स्टेज पर होता है तो कुछ ना कुछ डिमांड उसकी लिस्ट बनी ही रहती है, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, क्योंकि अभी उसे भगवान पर पूरा विश्वास नहीं है। क्या रक्षति इति विश्वास, कि रक्षा करेंगे मेरे भगवान हर समय हर जगह, हर अभी विश्वास नहीं। अगर ऐसा विश्वास होता तो फिर व्यक्ति भगवान से किसी प्रकार की ऐसी इच्छा ना करता जो कि उसको इस भौतिक जगत में बांधे रखे। और हम देखते हैं कि इस प्रकार निस्वार्थ भाव से बिना किसी भौतिक इच्छा के भक्ति करने वाले बहुत कम मिल पाते हैं। इसलिए जब कभी कहीं किसी व्यक्ति से किसी भक्त से बात करते समय किसी भक्त से उसके आचरण को देखकर अगर ये लगे कि हां ये भक्त हैं, ये उस शिक्षा का पालन कर रहे हैं, तो उनका संग करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हम कैसे इन इच्छाओं से दूर हों। भगवान कह रहे हैं कि मैं पूरी कर देता हूं भैया वो इच्छाएं भी, अगर परमात्मा हृदय में है, हम अगर मानते हैं कि परमात्मा सर्वात्मा है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, मेरे हृदय में भी है, तो मेरे हृदय की बात जानते नहीं होंगे क्या? लेकिन जब शब्दों में और विचारों में आ जाती है तो वो देहात बुद्धि की वजह से एक कर्म बन जाता है, एक इच्छा बन जाती है, और फिर भगवान को जीवन भर दो ऑप्शन है भगवान के पास, एक उस भक्त की उस भौतिक इच्छा को पूरी कर अपना पिंड छुड़ा लेना, ठीक है बाद में देखेंगे, अभी तो ये एकदम ऐसा ही कच्चा है, और एक वो हो कि ये व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से कर रहा है मैं इसको क्या दे दूं, मेरे पास क्या ऐसी चीज है जो मैं इसको दे दूं। और दूसरी बात, हमारी इच्छा में और भगवान की इच्छा में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारी इच्छा केवल एक देह एक शरीर एक परिवार से संबंधित होती है, केवल शरीर को कंफर्ट देने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सराउंडिंग जो अपने परिवार वाले हैं उनकी इच्छाओं उनकी नीड्स को पूरा करने से रिलेटेड होती है। लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी हैं, दूर तक देखते हैं, वो जानते हैं कि हमारा भला किसमें है, वो जानते हैं कि इसको मैं क्या दे दूं। सुदामा जी मांग कर लाए थे चिड़वा, गरीब व्यक्ति खाने के लिए कुछ नहीं, उसके बाद में जब मिलने गए मित्र से तो उसकी वाइफ कुछ परिवारों से कुछ सूखा चिड़वा लेकर आई थी, वो पोटली में बांधकर भगवान से मिलने गए, भगवान ने गले लगाया, अपने आसन पर बिठाया, अपने अश्रु से अपने सब चीजों के चरणों को धुलाई करी, मेरा मित्र आया है। मांगा नहीं सुदामा जी ने कुछ कि मुझे ये दे दो वो दे दो, लेकिन कहा कि मेरे लिए भाभी ने कुछ भेजा है क्या, तो वो चिड़वा निकला और भगवान ने खाया खूब अच्छे ढंग से। कहते कमाल हो गया, आज ऐसा फीस तो मैंने आज तक द्वारका में भी इतने दिनों से नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था उनका। खाने के पश्चात सुदामा को चाहते थे भगवान की मैं क्या दूं। जानते हैं सब भगवान कि इनकी नीड्स क्या है, इनकी इच्छा क्या है, और अगर देते भी कि देखो सुदामा तुम मेरे लिए ये लाए हो तो मुझे तो कुछ देना चाहिए, सुदामा लेते हैं? कुछ नहीं लेते। कहते मैं बड़ा खुश हूं। अरे जिस व्यक्ति के नाम में रुचि है, जो व्यक्ति हमेशा भगवान के नामों का जप और कीर्तन कर रहा है, उसको कुछ चाहिए क्या? क्योंकि उसके नाम जप से ही ना तो उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है। अगर लगती भी है तो देखो पूरा केवल संतुष्ट रखने के लिए उसके बाद फिर से पूरा जीवन भगवान का नाम लेना चाहता है। उसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन भगवान देना चाहते थे। मैं क्या दूं इस व्यक्ति को, बोलूंगा कुछ दूंगा तो नहीं लेगा, फिर भी दे दिया। क्या दिया? जिस जगह पर झुग्गी थी उनकी, उधर जो है बहुत बड़ा महल, और उस समय द्वारका के समय के महल आपको मालूम ही कैसे होते थे, नहीं हमारे टीएमटी और सीमेंट के नहीं होते थे, वो जो है जड़ित होते थे किनसे, हीरे जवाहरातों से, ऐसा महल दे दिया। लेकिन बताया नहीं भगवान ने कि मैं ये दे रहा हूं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट। कारण क्योंकि भगवान ने अपने को इस योग्य ही नहीं समझा कि मैं सुदामा को उसके द्वारा लाए गए चिड़वा के बराबरी में कुछ दे पा रहा हूं। क्योंकि भगवान को लगा मेरे द्वारा दिया गया महल जो है ये तो बहुत तुच्छ है। कारण कि मैं तो सुदामा के बराबरी में नहीं कर सकता। सुदामा तो एकदम निर्धन व्यक्ति है जिसको कि शायद एक समय का भोजन भी पूरे दिन में मुश्किल से मिलता है, और मैं उसकी बराबरी में तो हुई नहीं। मेरे पास तो पूरा राज्य है, राजा हूं मैं, 16,100 रानियां हैं, हर जगह महल ही महल, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं तो बराबरी कर ही नहीं सकता। इसके पास कुछ भी नहीं था, यह मांगकर कई परिवारों से उधार लोन लेकर चिड़वा लेकर आया मेरे लिए। मेरी स्थिति तो उसे कहीं 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 गुना ऊंची है, और खाने पीने की ऐसी भूख मरी तो मेरे को है ही नहीं। और जहां तक बात रही मांगने की, मैं तो कभी किसी मांगे ही नहीं कुछ, और ना मैं दे सकता हूं, तो इस प्रकार उस लेवल पर तो मैं हूं ही नहीं जिस लेवल पर सुदामा है। तो मैं अगर उनको कुछ दूंगा तो मेरा तो दिया हुआ सब कम है इसके आगे, तो इसलिए बताया नहीं। तो भगवान अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं कि उनके साथ कभी सपने में भी कह सकते हैं कि कुछ बुरा घटित हो ही नहीं सकता। ये तो भक्ति की गारंटी है भगवान के द्वारा। योग अक्षेम अवहाम हम, मैं तुम्हारा जो है योग अक्षेम करूंगा, अर्थात जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो मैं पूरा करूंगा। मां शुचा, डरो मत, इसलिए समर्पण कर डालो। इतनी बड़ी गारंटी भगवान देते हैं। इस संसार में अगर तो कुछ शुभ है, कुछ अच्छा है, तो वो है भगवान का नाम और भगवान की भक्ति में जो भी हमने एडवांसमेंट करी, वही हमारा धन है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब अशुभ है। चाहे हमारे पास कुछ भी हो, और हमारी इच्छाएं भी उसी चीजों से संबंधित रहती हैं। इसलिए युक्त वैराग्य एक शब्द है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोलते थे। व्यक्ति को चाहिए अगर उसके पास कुछ मटेरियल पोजेशंस है भी, तो उसे वो भगवान की सेवा में लगा डाले, क्योंकि मन पर जिस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का भार है, मन पर और शरीर पर और हमारे जो दूसरी हमारे पास जो इच्छाओं के द्वारा इकट्ठा किया हुआ हमारे कर्मों का जो फल है, इसके भार के तले हमसे उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आत्मा सत चित और आनंद का स्वरूप है। आत्मा का हमने इसको क्या कर दिया, असत अचित और निरानंद। ना तो ये सत रही, शाश्वतता इसने अपनी खो डाली, बार बार देह स्वीकार करने की वजह से ज्ञान इसका धूमिल हो गया, अहंकार की वजह से और नाना प्रकार की इच्छाओं की वजह से। तो चित मतलब ज्ञान और अचित हो गई अर्थात अज्ञानता में रहती है। इसलिए कब कैसा क्या डिसीजन लेना है, मेरे लिए मेरे देह के लिए मेरे परिवार के लिए क्या शुभ है, सही डिसीजन नहीं ले पाते, अचित हो गई। और निरानंद, आत्मा सदैव आनंद में रहती है लेकिन अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के कारण मेरा क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही बदल गया, इसलिए मैं आनंद की जगह निरानंद हो गया। हर समय दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा, मेरे मन में नाना प्रकार की इच्छाओं के साथ हर प्रकार की एंजाइटीज भी रहती है। तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार। तो भगवान की भक्ति से सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये कि धीरे धीरे भक्त व्यक्ति के अंदर देवताओं के भी गुण आने लगते हैं। और यहां पर जो दिति हैं, जो इंद्र हैं, जो कि भगवान के ही भक्त हैं या इन्होंने एक साल सेवा करी, इनके हृदय से जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी वो समाप्त हो गई और दिति ने भी इंद्र को कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में व्यक्ति का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है, जिस प्रकार एक लोहे को अग्नि के सामने रखने से कुछ समय बाद वो लोहा अग्नि का काम करने लगता है, उसी प्रकार जब कंडीशन सोल हमारे जैसे देहात्म बुद्धि की चेतना वाले व्यक्ति भगवान की सेवा में आते हैं जो कि पूर्ण पवित्र हैं, पूर्ण हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति की का शुद्धिकरण हो जाता है, तो वो हमें शुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार माता के गर्भ में ही जो है मारने के बाद भी उन सबको जीवन प्राप्त हुआ और फिर वो मरुत जो है इंद्र के मित्र बन गए। माता के गर्भ में ही मित्रता हो गई इंद्र से, फ्रेंडशिप। परीक्षित, परीक्षित का मतलब यह है कि जो हर समय प्रशिक्षण करता रहता है, ये व्यक्ति कौन है, है ना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था परीक्षित महाराज ने माता के गर्भ में, वैसा आदमी दोबारा देखने को नहीं मिला उनको कभी, तो इसलिए हरेक को ऐसे देखते रहते थे, ये तो नहीं है कहीं वो, ये तो नहीं है, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। माता के गर्भ में देखिए ना, हमारे शास्त्रों में कितना सुंदर बताया कि माता के गर्भ में ही अगर व्यक्ति है, बच्चा है, तो अगर उस समय माता जो भी संस्कार ग्रहण करती है बच्चे के अंदर वैसे संस्कार होते हैं। और यहां पर कश्यप मुनि ने भी अध्याय में माता जी को बताया क्या कि तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, जब माता के घर में शिशु आएगा तो पति का ही ध्यान करना चाहिए ताकि पति जैसे लक्षण उसके अंदर प्रकट हो, पति का ही अंश है। लेकिन दुर्भाग्य है आज के समाज का, इन कथाओं से शिक्षा नहीं ले पाता। अभिमन्यु माता के गर्भ में थे, अर्जुन द्वारा सारी बातें सुनी और युद्ध के लिए पहुंच गए, अंदर चले गए। कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, नारद जी से सारी शिक्षा ली, कथा सुनी, बाहर आए तो भक्त बन गए। तो संतान हमें कैसी चाहिए ये माता पिता पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कह रहे हैं कि पत्नी को उस समय पति पर ध्यान करना चाहिए। अब समस्या ये है कि अगर हम लोग आजकल के पतियों की करेक्टर की चर्चा करें तो बड़ा मुश्किल है, उस पर ध्यान करेंगे तो संतान वैसी होगी, तो पहली बड़ी शुरू से ही है ना, क्योंकि पति लोग उस प्रकार का आचरण नहीं कर पा रहे, उन्हें लगता है कि हम हैं बस, प्रभुत्व जमाने की तो लाइसेंस मिल गया उन्हें, कोई आदर्श नहीं, कोई करैक्टर नहीं ढंग का, दुनिया भर के सारे गंदे काम उसने करने, और पत्नी से चाहता है कि वो सारी जो क्वालिटीज पत्नी वाली होती है उसके अंदर ही हो, और मैं क्या हूं, मैं हर प्रकार का नियम तोड़ा। तो जब पतियों ने नियमों को तोड़ा ना, हर पति चाहता है मेरी पत्नी पतिव्रता हो, लेकिन हर पति मतलब ज्यादातर वो हर प्रकार के नियमों को तोड़ना चाहता है, वो चाहता मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूं, कि मैं किसी दूसरी की पत्नी पर भी मैं जो हूं, लेकिन जो दूसरी की पत्नी है वो भी तो किसी की पत्नी है, और जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारी पत्नी है, किसी दूसरे के लिए तुम्हारी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। युवावस्था में लड़के लोग अपनी बहन के आसपास घूमते रहते हैं, खबरदार किसी लड़के ने देखा तो, और दूसरी आंख से वो दूसरी की बहन को देख रहा हो, अरे भैया तू दूसरी की बहन पर नजर मारता है, कोई दूसरा तेरी बहन पर नजर मारता है, तू चाहता मेरा परिवार सिक्योर रहे, मैं बस दुनिया भर के गंदे काम कर लूं, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए जैसे को तैसा, एक कई ऐसे ऐसे भी परिवार है जिसमें चार लोग हैं तो चारों ही भरतनाट्यम कर रहे हैं, क्योंकि यद यद आचरती श्रेष्ठ है, घर के जो श्रेष्ठ लोग हैं जैसा जैसा करेंगे उसका बदला लेने के लिए, वो कहते हैं ये ऐसे मैं ऐसा, वो कहते ऐसे ऐसे, सब खत्म। ऑफिस को नाम दिया गया है हाई सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, हाई सोसाइटी मतलब एनिमल सिविलाइजेशन, जहां पर कोई रक्षाबंधन नहीं है, जहां पर कोई फेरे नहीं है, जहां पर कोई परिवारवाद संवाद वो नहीं है, तो उसे बोलते हैं एनिमल सिविलाइजेशन, है ना। तो फिर जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण आ जाते हैं तो फिर वो पशु के भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यहां पर पति पर ध्यान लगाने की बात कही, तो पति पर ध्यान लगाने के लिए पति को वैसा आदर्श भी होना चाहिए, तब जाके उस तरह के गुण का व्यक्ति हमारे गर्भ में प्रकट होगा। आजकल कहां ध्यान लगाया जाता है, मान लीजिए अगर पति उस अब पहली बात तो गर्भधारण संस्कार नाम की कोई वस्तु किसी को पता ही नहीं, विवाह नाम के सबको पता है विवाह संस्कार, लेकिन गर्भधारण संस्कार नाम का किसी को कुछ नहीं पता। तो एक तो वहीं से खराब हो गया सिस्टम, कैसी चेतना रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए कुछ नहीं पता। फिर पति की मानसिकता और पत्नी की मानसिकता, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो वो मानसिकता हमारे टीवी ने पूरी तरह पॉल्यूट कर दी है, तो फिर ध्यान का मतलब क्या होता है, वो उस चीज का ध्यान करना जो आपके सामने नहीं है। ध्यान का मतलब क्या होता है, जो चीज सामने उसका ध्यान थोड़ी करोगे आप, जो चीज सामने नहीं दिख रही ध्यान तो उसका होता है ना जी। अभी उस मानसिकता के द्वारा मान लीजिए टेलीविजन देखा जा रहा है तो ध्यान किस पर लगेगा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा सब देख रहे हैं हम, हर प्रकार का उसके अंदर हम लोगों को गन परोसा जा रहा है, तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो सारे संस्कार उस तरह की चेतना हमारी बनती है और फिर गर्भ में शिशु की बनती है। किसी ने हमें एक साल पहले एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में एक डेढ़ दो साल का बच्चा था, नहीं डेढ़ दो साल के उम्र, हाँ एक ये डेढ़ साल का था, वो छोटा सा बच्चा था और उसके हाथ में सिगरेट थी, वो लगभग एक दिन में 30-40 सिगरेट पीता है और सिगरेट को अपने हाथ में ऐसे घुमाता है जैसे कि बंबई का कोई बहुत बड़ा माफिया डॉन घुमाता और पीता, और सिगरेट पीने के साथ साथ छल्ले छोड़ता है ऐसे करके गोल गोल, एक साल का बच्चा। पिताजी की या तो प्रमाणी की दुकान रही होगी या नहीं भी रही होगी, खूब पीते रहे होंगे, या वो कुछ इस तरह का व्यक्ति रहेगा जो चेन स्मोकर जिसे बोलते हैं, और बस किसी तरह वो आ गया, वो बचपन से उसने सिगरेट उठाना शुरू कर दिया। इसी तरह के लोग, तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार की चेतना रहेगी माता की पिता की, जिस प्रकार जिन चीजों पर ध्यान रहेगा, तो वही सैंपल घर में आएगा। आप जहां मर्जी फिर माथा रगड़िए, जहां मर्जी कुछ करिए, उसके संस्कारों को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भगवान के भक्तों की, भगवान की कृपा हो गई और कहीं भक्तों का संग हो गया ऐसे माता पिता का जिन्होंने उन सब चीजों का ध्यान शुरू में नहीं रखा, नो प्रॉब्लम, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, तो व्यक्ति को उसी समय से प्रयास करना चाहिए अपनी भक्ति में, अपने को और अपने परिवार को लगाने का। मुश्किल तो है, इसलिए भक्तों को संघर्ष करना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है, प्रभु जी ये नहीं हो रहा, प्रभु जी वो नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में क्या करूं, वो हो रहा है, बच्चे ये नहीं कर रहे, बच्चे वो कर रहे, बच्चे ये नहीं मानते। प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रकार का संघ बढ़ाना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, भक्तों के संघ में रहना पड़ेगा, मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारे अंदर जो असली धन कमाने की हमारे अंदर जो योग्यता है आध्यात्मिक उन्नति करने की, वो हो पाएगी। अन्यथा पशुवत जीवन जीना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करने से अगर कहीं हमारे अंदर इच्छाएं भी हैं तो वो शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन बढ़िया तो यही है कि निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा की जाए, क्योंकि वो जानते हैं मेरे भक्तों को कब क्या चाहिए, मैं वही दूंगा और बेस्ट होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो सकते हैं जी? इंद्र जो है उन्होंने अपनी, वैसे बता रहे हैं, लघिमा और अणिमा नाम की जो सिद्धि है उसके द्वारा अपने शरीर को सूक्ष्म कर लिया। कान से भी जा सकते हैं, नाक से भी जाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हो गए कि जो अणु है उससे भी छोटे, तो फिर वो तो रोम छिद्र से भी घुस सकते हैं ना। रोम छिद्र तो बड़ा दरवाजा होगा, उस बहुत बड़ा दरवाजा है उसके लिए, अणु के लिए। तो अणु से भी छोटे हो गए तो रोम छिद्र का दरवाजा बहुत बड़ा है घर में प्रवेश करने के लिए, वो सीधा यहां से प्रवेश कर गए। कुछ और कोई? ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।